ओम शांति। जो हमारी सीरीज चल रही है 16 कलाओं की, उसमें जो अभी चल रहा है एकाग्रता, तो आज का जो टॉपिक दिया हुआ है चिंतन में एकाग्रता। चिंतन में हम एकाग्रता कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चिंतन क्या होता है। चिंतन और चिंता, चिंता नहीं चिंता। तो चिंता क्या होता है और चिंतन क्या होता है। चिंता जो हम करते हैं तो उससे हमारी जो लाइफ जो है खराब होती है, वो चिंतन से जो है हमारी लाइफ बनती है। हम जितना चिंतन करेंगे उतना हमारी बुद्धि का विकास होता है, और जितना हम चिंता करेंगे उससे हमारी बुद्धि जो है डल होती जाती है, बुद्धि जो है हमारी खराब होती जाती है। जितना हम चिंतन करेंगे उसका जो इफेक्ट हमारे माइंड पे तो पड़ता ही है, लेकिन सारे बॉडी पे पड़ता है। और चिंता हम जितना करेंगे उससे हमारी बॉडी जो है खराब होती जाती है। हम चिंतन करेंगे तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है, और चिंता करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है लेकिन प्रॉब्लम और बढ़ते जाती है। तो वैसे लोग कहते हैं कि चिंतन और विचार दोनों एक ही बात है, लेकिन विचार जो है हमारे मन से आते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो चिंतन है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। विचार जो करते हैं हम हमारे मन से करते हैं, और जो चिंतन जो होता है वो बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। तो इसलिए चिंतन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। तो जैसे टॉपिक है चिंतन में एकाग्रता, तो एकाग्रता माना क्या हम सब जानते हैं। एकाग्रता माना ध्यान, ध्यान माना मेडिटेशन नहीं, लेकिन एकाग्रता माना किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट होके एक ही बात पे फोकस करके सोचना, पूरी तरह से अलर्ट होके सोचना, पूरे होशो हवास में सोचना, उसे जो कहा जाता है ध्यान, या हम कह सकते हैं कि एकाग्रचित होकर सोचना। तो एकाग्रता अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है। जैसे बताया हम जितना चिंतन करते हैं तो हमारी लाइफ में जो है पॉजिटिव चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति चिंतन कब करता है, नॉर्मली चिंतन व्यक्ति तब करता है जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसका चिंतन करता है, या व्यक्ति को उसका हैबिट होती है। कई लोगों को जैसे चिंतनशील जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हैबिट होती है किसी अलग अलग बातों पे चिंतन करने की, तो व्यक्ति चिंतन करता है। उसमें यदि इच्छा है किसी वस्तु को जानने की, किसी बात को जानने की, तो उस समय वो चिंतन करता है। या जैसे बताया जब किसी को होमवर्क दिया जाता है तो उस समय व्यक्ति चिंतन करता है। लेकिन नॉर्मली चिंतन व्यक्ति तब करता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसके सामने कोई इच्छा है। जैसे बहुत सारे दार्शनिक होकर गए हैं इस सारी दुनिया में, तो उनको किसी ने कोई होमवर्क नहीं दिया कि आप ये होमवर्क है इसलिए आप चिंतन करो, लेकिन एक नेचुरल हैबिट होती है। तो वो दूसरों को तो चिंतन से जैसे बताया कि हमारी बुद्धि का विकास होता है, इसलिए जो ये जो है एक्चुअली गॉड गिफ्ट भी होता है, और लोग जो है डेवलप भी करते हैं ये स्किल जो है, चिंतन की स्किल जो है डेवलप भी करते हैं। तो चिंतन जो होता है हमारे शिक्षा, हमारे स्मरण, हमारे पूर्वानुभव और हमारी कल्पना, इन चार चीजों के ऊपर आधारित होता है। हमारी शिक्षा का स्तर क्या है उसके हिसाब से हम चिंतन करते हैं, हमारे पूर्वानुभव कैसे हैं, हमारे ओल्ड एक्सपीरियंस कैसे हैं उसके अनुसार हम चिंतन करते हैं, हमारी कल्पनाएं कैसी हैं उस अनुसार हम चिंतन करते हैं, और क्या बताया चौथा, कल्पना हो गया, स्मरण, पूर्वानुभव, स्मरण। स्मरण माना जो हम किसी चीज को कितना याद रख सकते हैं, या पूर्वा अनुभव अलग चीज होती है, स्मरण ये होता है कि हमने जो चीज पढ़ी हुई है उन पढ़ी हुई चीजों को हम दोबारा कितना याद कर सकते हैं, या वो चीजें टाइम पर कितनी याद आती है हमें, तो स्मरण या याददाश्त जिसे कह सकते हैं। तो इन चार बातों के ऊपर वैसे चिंतन जो है डिपेंड होता है। और जो चिंतनशील व्यक्ति जो होते हैं वो चिंतनशील, जैसे बताया कि अगर हम चिंतन करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में बहुत सारे गुण आते जाते हैं। व्यक्ति जो चिंतनशील जो व्यक्ति होता है वो किसी भी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से चिंतन कर सकता है, और दूसरों को समझा भी सकता है, अपना मत जो है दूसरों को बता सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है कि इससे ये फायदा है और ये नुकसान है। अगर आप किसी चिंतनशील व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे, कुछ सॉल्यूशन पूछेंगे, तो आपको 10 सॉल्यूशन बताएगा, और 10 सॉल्यूशन में से ये भी बता सकता है कि इसमें जो है नंबर वन सॉल्यूशन ये है, अगर आप ये करो तो उससे ये फायदा होगा, उससे ये नुकसान होगा। और जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं वो जो काफी उनमें दृढ़ता होती है और उनमें धीरज भी बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है उसमें, वो जल्दी उत्तेजित नहीं हो जाते चिंतनशील जो व्यक्ति होते हैं। और जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं एक ही बात को अलग अलग तरीके से खुद भी विचार करते हैं और दूसरों को भी पूछते हैं कि इस बात के ऊपर आपका क्या विचार है, अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने है या किसी और के सामने अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करेगा, किस तरह से उसको सॉल्व करेगा। तो ये चिंतनशील व्यक्तियों के कुछ लक्षण होते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम चिंतन कब करते हैं। जैसे बताया कि हमारे सामने कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हम उसका चिंतन करते हैं। अगर हमारी इच्छा है स्वयं चिंतन करने की तो हम उस पर चिंतन करते हैं। अगर हमें कोई, जैसे बताया, होमवर्क दिया है, कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, किसी अन्य व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आई हुई है, तो हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं कि तो हम उस समय हम चिंतन करते हैं। तो जैसे बताया कि चिंतन जो है बुद्धि से किया जाता है, विवेक से किया जाता है, तो उसका जो हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें हमारे लाइफ में मिलता है। हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को हम सॉल्यूशन दे सकते हैं या दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चिंतन के लिए जब हम किसी भी बात में जाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स जो है चिंतन के ऊपर कि हमारे सामने कौन सी समस्या आई है, उस समस्या को हम देखते हैं, अलग अलग रूपों से देखते हैं कि ये समस्या हमारे सामने आई है। सेकंड जो स्टेप्स है उसके ऊपर हम प्रयास करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, सचमुच में सोचना कि इसका प्रैक्टिकल में किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक तो है थ्योरी हमारे सामने आती है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में सोचना शुरू करते हैं कि इसके ऊपर अब जो हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है, हम पुराने जो हमारे अनुभव हैं या पुरानी जो बातें होकर गई हैं उसके साथ में कंपेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने पहले भी आ चुकी है क्या, उस समय हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था, या उस समय ये प्रॉब्लम छोटी थी और अब बड़ी होकर आई हुई है, तो हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो कंपेरिजन के बाद में जो है हम उसका प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान देखते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, उससे ये करेंगे तो ये फायदा होगा। जैसे जगदीश भाई के लिए बताते थे ना कि अगर उनके साथ कोई भी बात उन्हें बताई जाए कि ये करना है या ऐसा होना चाहिए, तो तुरंत वो उसके 8-10 प्रॉफिट एंड लॉस उसी समय बता देते थे कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये चिंतनशील व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि हमारे सामने जो पांचवा जो स्टेप है चिंतन में, जब हम किसी भी बात का चिंतन करते हैं, तो फिफ्थ स्टेप जो है कि हम हमारे सामने जो भी सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन में से जो एक सॉल्यूशन, जो एक उपाय हमें अच्छा लग रहा है या हमें लगता है कि इसके द्वारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हम उसको जो हमारी लाइफ में लाना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल में लाना शुरू करते हैं। तो ये चिंतन के 5 स्टेप्स हैं। तो जैसे हम चिंतन करते हैं तो चिंतन के बारे में बताते हैं कि चिंतन के अलग अलग प्रकार है चिंतन जो किए जाते हैं। तो पहला जो चिंतन जो किया जाता है, बताया जाता है, यथार्थवादी चिंतन। तो जो यथार्थवादी चिंतन है उसमें हमारे सामने क्या सचमुच प्रॉब्लम है या क्या बात है, उसके ऊपर हम उसका सॉल्यूशन लेना शुरू करते हैं। तो जो यथार्थवादी चिंतन होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है स्कूल में, क्लास में पढ़ाई करता है, उसे कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो ये सोचना शुरू करता है कि आगे जो आने वाली एग्जाम है उस एग्जाम में कैसे मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूं। तो ये हो गया यथार्थवादी चिंतन कि सचमुच ये प्रॉब्लम है और उसके बाद मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, ये हो गया यथार्थवादी। इसमें भी 3 टाइप्स अलग अलग बताए गए हैं। एक है अभिसारी। अभिसारी चिंतन माना कोई रूढ़िवादी बातें हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम उसमें थोड़ा बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, प्रैक्टिकल में करते नहीं, खाली सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये होगा, लेकिन हम कर उसी चीज को कर रहे हैं। ये हो गया यथार्थवादी में फर्स्ट अभिसारी। इसमें सेकेंड जो होता है अपसरण। अपसरण इसको जो है सृजनात्मक भी कहते हैं, क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, क्रिएटिव चिंतन भी कहते हैं, चर्निंग। तो इसमें जो होता है हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम, जैसे बताया, अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू या अलग अलग पहलुओं से उस पर विचार करते हैं कि ये हमारे सामने प्रॉब्लम है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसमें जो थर्ड जो होता है प्रत्यक्ष, जो एक हो गया अभिसारी अपसरण, और एक सॉरी तीसरा है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक चिंतन वो होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई या हमने कोई बात सुनी किसी के बारे में और हम बिना सच्चाई जाने उसके ऊपर जो है हमारे कमेंट देना शुरू कर देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है। तो वो हो गया आलोचनात्मक चिंतन कि हम उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना माना पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, निगेटिव वे में भी हो सकती है, वैसे आलोचना नॉर्मली जो है निगेटिव वे में ही ली जाती है। तो ये हो गया आलोचनात्मक चिंतन। तो ये हो गया फर्स्ट यथार्थवादी। उसके बाद दूसरा जो है इसमें स्वली चिंतन। स्वली चिंतन जो होता है उसमें जैसे कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ाई करता है और वो सोचता है कि मैं बड़ा बन के डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनने के बाद फिर अच्छी कमाई करूंगा और मैं एक कार लूंगा और उस कार में घूमने जाऊंगा अपने पेरेंट्स के साथ में और एक अच्छी लाइफ होगी, बंगला होगा, मतलब इस तरह से चिंतन अगर कोई करता है तो वो जो आता है स्वली चिंतन में कि उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो विचार कर रहा है, पॉजिटिव विचार कर रहा है। हम इसे निगेटिव विचार नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव विचार है। तो ये हो गया स्वली चिंतन, सेकेंड टाइप जो चिंतन का हो गया। तो चिंतन के नॉर्मली जैसे बताए दो टाइप ही बताते हैं, पहला यथार्थवादी और दूसरा जो है स्वली चिंतन। इसके बाद इसमें कुछ लोग जो बताते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं तो चिंतन जो है हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, उससे हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि चिंतन करने का जो प्रभाव जो है हमारे सारे बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि चिंतन जो है बहुत ही जटिल माइंड का जो है सबसे जटिल काम जो है, एकदम हार्ड वर्क जो है वो चिंतन होता है। और चिंतन में भी हर एक की लेवल अलग अलग होती है करने की, जैसे जिसकी बुद्धि होती है उस प्रकार से वो व्यक्ति चिंतन करता है, हाई लो मीडियम अलग अलग लेवल के व्यक्ति चिंतन करता है। हर एक का परसेंटेज होता है, हर एक की बुद्धि कितनी है, उसके पूर्व अनुभव कितने हैं, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, वो किस सोसाइटी में पला बढ़ा है, किन लोगों के बीच में रहता है, उन सारी चीज़ों का प्रभाव जो है हमारे चिंतन पर पड़ता है। तो चिंतन में और तीन टाइप के जो लोग चिंतन बताते हैं कि एक है प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन माना आप बैठे हैं यहाँ पे और अभी यहाँ पे भूकंप आ जाए या आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत भागना शुरू कर देंगे। कोई उस समय आपको बोलेगा नहीं कि आपको क्या करना है, आप सोचेंगे नहीं कि टीवी पे बताया गया था भूकंप आने पे क्या करना होता है या आग लग जाए तो उस समय क्या करना होता है, आप ये सोचेंगे नहीं। तो ये प्रत्यक्ष चिंतन हो गया कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कई बार कोई आग से जल जाता है या किसी को कुछ ऐसे इंजरी वगैरह हो जाती है तो वहां दोबारा जाने से डरता है वो बच्चा, तो वो कोई चिंतन नहीं कर रहा है। ये चिंतन जो है जानवरों में जो विचार होते हैं उनके मन में जो थॉट्स आते हैं और जो इंसानों में होता है, तो इंसान जो है चिंतन करता है इसलिए इंसान को जो है विवेक युक्त या बुद्धि जो कहते हैं इंसानों में होती है। जानवरों में भी बुद्धि होती है लेकिन वो उसका चिंतन नहीं करते हैं, वो केवल विचार आते हैं उनके इसमें। जैसे कोई कुत्ता है, हम कोई व्यक्ति बार बार कुत्ते को मारता है, एक ही कुत्ते को समझो मारता है, कहीं वैसे जा रहा है और बार बार मारता है, तो जब कुत्ता नेक्स्ट टाइम देखेगा उस व्यक्ति को तो अपने आप भागना शुरू कर देगा वहां से। वो डिपेंड है कि उसमें डेयरिंग कितनी है, अगर वो डेयरिंग वाला होगा तो जाके काट भी लेगा नेक्स्ट टाइम उसको। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक अपने भाई की बाइक खड़ी थी और वो तो कोई बाइक गिरा के चले गया, तो वो सोच रहा था कि ये बाइक गिराई किसने, तो उसने फिर कैमरे में बुलाया देखने के लिए कि ये बाइक कौन गिरा के गया, और कोई छोटा बच्चा तो गिराएगा नहीं और 15 मिनट में कौन बाइक गिरा के गया। तो बाद में देखा तो वहां से एक बंदर तेज दौड़ता हुआ आया, वो जा रहा इस रास्ते से, बाइक यहाँ पे खड़ी है, सीधा जंप मारा बाइक के ऊपर, बाइक गिर गई और वहां पे चले गया। तो वो जो व्यक्ति है बंदरों को हमेशा तंग करता है, हमेशा करंट देता है, उनको परेशान करता है। तो बाद में 2-3 लोगों ने और जब देखा तो उसने कहा ये कर्मों का हिसाब किताब है, बाकी के लोगों की भी गाड़ियां खड़ी होती लेकिन कभी बंदर ने कुछ किया नहीं, और इसके पहले भी बंदर उसकी बाइक को गिरा चुका है एक बार पहले भी, जो भी है। तो ये जैसे बताया प्रत्यक्ष चिंतन, तो जानवर भी विचार करते हैं लेकिन वो चिंतन नहीं करते उस तरह से, उनमें भी भावनाएं होती है, थॉट्स आते हैं उनके अंदर भी। जैसे कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है अपने घर में तो जो व्यक्ति जाता है तो कुत्ता तुरंत उसके पास भाग के जाएगा, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तो उसे भौंकेगा। क्यों भौंकेगा? क्योंकि उसको अच्छी तरह से जानता है, तो उसमें वो कोई चिंतन नहीं कर रहा है, कुत्ता कोई चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सामने जो नॉर्मली चीजें आ रही है उसके पर वो रिप्लाई दे रहा है या उसको फेस कर रहा है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन के बाद सेकंड जो है कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन में वो चीजें होती है कि जो चीज हमने कभी देखी नहीं है लेकिन हमें केवल मालूम है, जैसे कोई गांव का व्यक्ति है उसे कार के बारे में सुनाया है कि कार एक चीज होती है जिसमें लोग बैठकर जाते हैं, तो वो केवल सोचेगा कि हाँ इस तरह से कोई चीज होगी उसमें लोग बैठकर जाते हैं, और उसे बताया जाए कि कार का टायर पंक्चर हो गया है तो वो केवल कल्पना कर सकता है कि कार का टायर पंक्चर हो गया, तो पहले सोचेगा ये टायर क्या होता है, अच्छा टायर में हवा भरी होती है, तो वो सोचेगा कि हवा कैसे भरी जाती है टायर में, उसने कभी देखा नहीं है लेकिन केवल वो कल्पना कर रहा है कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये हो गया कल्पनात्मक चिंतन। और इसमें जो थर्ड टाइप का जो चिंतन बताते हैं प्रत्ययवाची चिंतन। प्रत्ययवाची चिंतन में जो होता है कि व्यक्ति को सब चीजों का पूरा नॉलेज होता है, जैसे बताए कि अपने पूर्व अनुभव भी होते हैं, उसका शिक्षा का स्तर भी उस तरह से होता है, और वो पहले की जो प्रॉब्लम्स आ गई है उसको किस तरह से सॉल्व किया है, और इस तरह की अभी जो प्रॉब्लम है उसको उसने किस तरह से सॉल्व किया है, पूरे होशो हवास में सब तरीके से विचार करता है किसी एक बात के ऊपर, तो ये जो है पर्याय प्रत्यय वाचक चिंतन इसे कहते हैं, कि इस प्रकार के चिंतन में जो व्यक्ति पूरे तरह से अलर्ट होकर विचार करता है, तो उसमें जो व्यक्ति उसका शिक्षा का स्तर क्या है वो भी इसमें आता है, उसके पूर्व के जो अनुभव है वो कैसे हैं, उसके स्मरण शक्ति कितनी है, उसकी कल्पना का लेवल क्या है, वो किस प्रकार से सोच सकता है, तो ये सारी चीजें जो है थर्ड टाइप के चिंतन में आती है, और इसे जो है सबसे हाईएस्ट लेवल का जो है चिंतन इसे कहा गया है, कि जिसमें व्यक्ति सभी तरीके से एक ही बात पर विचार करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे भाप का इंजन बना, जेम्स वाट ने बनाया भाप का इंजन, तो जैसे बताते हैं कि वो चाय की केतली बॉयल हो रही थी और वो ढक्कन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसने सोचा कि ये भाप में इतनी ताकत है तो इसका हम दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं क्या। तो ये सारे जो है चिंतनशील व्यक्तियों के लाइफ के जो एग्जाम्पल है, कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई या उन्होंने देखा किसी और उनको इच्छा हुई उस बात को जानने की। जैसे कि सुकरात के लिए कहते हैं कि वो कभी किसी मार्केट वगैरह में जाते थे तो ऐसे ही लोगों को पूछता था कि अगर आपकी चप्पल टूट जाए तो आप क्या करेंगे, तो लोग कहते थे कि चप्पल टूट जाए तो हम मोची के पास जाएंगे ठीक करने, तो वो पूछता था कि फिर आप टेलर के पास क्यों नहीं जाते, टेलर भी तो सिलने का ही काम सिलाई का काम करता है, लेकिन आप टेलर के पास क्यों नहीं जाते चप्पल सिलने के लिए। तो लोग उसके पास देखते थे, क्योंकि लोगों को ऐसे दार्शनिक लोग होते हैं या चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो पागल है क्या सवाल पूछते हैं। जैसे यहां पर भी कई बार किसी को टॉपिक दिया जाता है, लोग तुरंत ये हो जाते ये क्या टॉपिक है बोलते करके, इसमें क्या चिंतन करने सोचने करके। तो सुकरात ऐसे लोगों को पूछता था, फिर अगर किसी को बोलता था कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे, तो लोग बोलते मैकेनिक के पास जाएंगे, गैरेज में जाएंगे हम गाड़ी लेके, तो बोलता था आप कारपेंटर के पास क्यों नहीं जाएंगे गाड़ी लेके, तो वो बोलते भाई वो तो लकड़ी का काम कर रहे हैं और ये तो गाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों को सवाल पूछता था, तो फिर कई लोगों को इसमें वो ये भी बताता था कि आपको जब ये पता है कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें इसके पास जाना है, तो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या उसको हमें सॉल्व करना है, या उसका मेन कहना यह था कि अगर आप किसी को राजा बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति में वो गुण है या नहीं, वो बातें हैं या नहीं, वो संस्कार राजा बनने के है या नहीं, उसके बाद ही हमें उसे राजा बनाना चाहिए। हम किसी को भी तो ऐसे राजा नहीं बना सकते हैं या बना देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से वो लोगों को पूछता था, तो उसकी जो ये कल्पनाशीलता हम कह सकते हैं कि उसका जो चिंतन किस प्रकार से करता था उस प्रकार मतलब बताया गया ऐसे। तो ये अलग अलग टाइप के जैसे हमने चिंतन के बारे में देखा और लोग क्यों चिंतन करते हैं। तो हमारा जैसे टॉपिक है कि चिंतन में एकाग्रता, तो एकाग्रता माने कॉन्सेंट्रेशन हम चिंतन में कैसे लाए। तो चिंतन जैसे हमने सुना कि ये सारी बातें चिंतन के अंदर आती है, वो चिंतन हम करते तब है जब कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलना है या हमारी इच्छा है किसी बात को हमें जानना है, किसी बात के डीप इसमें जाना है, तब उसमें हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन में एकाग्रता कैसे ला सकते हैं, चिंतन में एकाग्रता। चिंतन में एकाग्रता लाने के लिए सबसे जो पहला चिंतन अगर किसी को करना है तो सबसे पहले चाहिए मौन। मौन हम एकांत भी ले सकते हैं, उसे मौन ले सकते हैं। तो मौन माना केवल मुख का मौन नहीं है, अंदर से हम कितने मौन है, हमारी बुद्धि जो है वो कितनी साइलेंस है, बुद्धि कितनी मौन में है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अपने आप हमें याद आते जाते हैं, अपने आप हमारी बुद्धि को टचिंग होते जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को चिंतन करना है तो एकांत का अभ्यास जो है उसे बहुत होना चाहिए। तो एकांत के लिए हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, जैसे क्लास में भी कई बार सुना होगा कि आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं किसी अलग जगह पर, नदी के किनारे, लेक के किनारे, कहीं पर भी, या शांत जो वातावरण है वहां पर जाके हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे सब बताया कि मौन, मौन माना हमारा दिन भर में क्या रूटीन चल रहा है उसमें हम कितने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, कितना बाह्य मुक्ता में आ रहे हैं और कितना हम अंतर्मुखी बन रहे हैं, तो इसका जो है प्रभाव जो है हमारे चिंतन पर पड़ता है। तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा मौन में रहेंगे, हमारे मन को शांत रखेंगे, उतना हमारा चिंतन जो है उतना अच्छा होता जाएगा, श्रेष्ठ चिंतन होता जाएगा, नए नए पॉइंट जो है अपने आप हमें टचिंग होते जाएंगे। तो सबसे पहला है मौन, या हम जिसे एकांत कह सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट इसमें लिया गया है कि भोजन, हमारा भोजन किस प्रकार का है। अगर हम ज्यादा हैवी भोजन कर रहे हैं या ज्यादा भोजन कर रहे हैं तो आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें उबासी आएगी। अगर आप कम भोजन कर रहे हैं बिल्कुल, या कोई भूखे रह रहा है तो भी, हाँ तो भी हमारा ध्यान जो है वहां पर जाएगा, तो हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड की ये आदत होती है कि जो सामने प्रॉब्लम है पहले उस चीज को सॉल्व करने के लिए सोचता है। भूख लगी तो पहले वो ये सोचेगा कि हम भोजन करें और सेटिस्फाई है, उसके बाद में आगे का चिंतन करेगा। तो हम भोजन कितना करते हैं, कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए जैसे योगियों के लिए बताते हैं कि दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए और 1 बार में केवल 24 निवाले ही खाने चाहिए और 24 बार ही चबाना चाहिए, ये योगियों का भोजन बताते हैं। 24 टाइम्स खाओ, 24 टाइम चर्न कर, च्यूइंग करो उसको, चबाओ उसको ऐसे। तो ये भोजन हो गया। उसके बाद में जो थर्ड जो पॉइंट बताते हैं चिंतन करने के लिए, चिंतन के लिए हमारा शरीर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी शरीर जो होता है उसमें एक हेल्दी माइंड रह सकता है। तो अगर हेल्दी शरीर आपको रखना है तो जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, कई लोग वॉकिंग वगैरह करते हैं, कई लोग प्राणायाम वगैरह करते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज करते हैं कि अपने शरीर को जो है हम चुस्त रखें, और उसके बाद फिर अगर शरीर ठीक है हमारा तो हम अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा माइंड जो है बार बार शरीर जो है खींचता है, क्योंकि आत्मा को इतने 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है ना, तो शरीर जो है हमारे मन बुद्धि को खींचता है, तो हमारा जो चिंतन जो है हम ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, अगर चिंतन हमें करना है तो हमारे बॉडी को जो है हमें एकदम ठीक रखना चाहिए, तो ही हमारा चिंतन ठीक हो सकता है। जुड़ता हाँ, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो है चिंतन अगर हमें करना है तो हमें कोई टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट माना ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम पे, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में देखें कि कौन से समय हम फ्री होते हैं, या किस समय हमारा मन जो है पूरी तरह से शांत होता है या ज्यादा से ज्यादा शांत होता है, उस समय हम चिंतन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर ही चलते फिरते चिंतन करना है, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय है, जैसे कई लोगों का होता है कि मॉर्निंग अमृत वेले के बाद चिंतन अच्छा होता है, कई लोगों का ये होता है कि नहीं भोजन करते समय हमारा चिंतन अच्छा होता है, कई लोगों का ये नहीं, चिंतन और एकाग्रता दोनों अलग अलग चीज है। अगर आपका एकाग्र चित होंगे तो ही आपका चिंतन हो सकेगा आपका। हाँ, तो चिंतन में एकाग्रता कैसे लाए वो बता रहा हूं मैं। तो भोजन करते समय भी आप चिंतन कर सकते हैं, अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप चिंतन कर सकते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठे तो आप चिंतन नहीं कर सकते वहां पे। तो अगर आप जितना एकाग्र होकर बैठेंगे, अकेले बैठेंगे तो आप भोजन पे भी चिंतन कर सकते हैं। कई लोगों का ये होता है कि नहीं, हम जब दोपहर को रेस्ट के बाद में आते हैं ना 4 बजे 5 बजे, उसके बाद में जो माइंड शांत होता है, क्योंकि उस समय बुद्धि अलर्ट ज्यादा होती है, दिन भर हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद में जब दोपहर को रेस्ट के बाद में आते हैं तो उस समय बुद्धि अलर्ट भी होती है और दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, तो उस समय हम अच्छा चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन के लिए जो हमें टाइम सेट करना पड़ेगा कि खुद की दिनचर्या को देखते हुए, अपने शेड्यूल को देखते हुए, कि किस समय हम जो है फ्री होते हैं और वो टाइम हमारे लिए अच्छा है चिंतन करने का। जैसे कई लोगों का ये होता है कि रात को चिंतन सोचते हैं कि चिंतन करते करते रात को सो जाए, और तो जहां पर कोई गाड़ी अटक जाती है, मतलब पॉइंट अटक जाती है उनकी, तो उस समय वो सो जाते हैं, फिर वो उसी बात को रिवाइज करते हुए सो जाते हैं, और उनका ये अनुभव है कि मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, उसका पॉइंट जो हमारे सामने आ गई होती है कि इसका ये सॉल्यूशन है। तो अलग अलग लोगों के लिए चिंतन का जो टाइम अलग अलग है, तो हम अपने रूटीन को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमें किस समय चिंतन के लिए फिक्स करना है। इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया कि चिंतन के लिए एक डेडलाइन देनी चाहिए कि इस पॉइंट पे मुझे इतने समय चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट को लेकर आप महीने भर चिंतन करते रहे या साल भर चिंतन करते रहे, ऐसे नहीं, डेडलाइन देनी है कि हमें इतने इस पॉइंट के लिए इतना टाइम देना है, समय देना है चिंतन करने के लिए, और अगर वो नहीं होता है तो आप दूसरा कोई पॉइंट ले सकते हैं चिंतन करने के लिए। और कई बार ऐसे होता है कि सेकेंड पॉइंट का चिंतन करते करते फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपने आप टचिंग होने लगती है, हमें अपने आप हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि हम चिंतन तो इस चीज का कर रहे हैं लेकिन ये चीज जो है अपने आप आनी शुरू हो गई। क्योंकि जैसे बताया कि चिंतन में जो हम बुद्धि यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, 10 साइड से एक ही बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए सोचते हैं, तो वो जो है डेडलाइन देना चाहिए हमें कि इस बात के लिए हमें इतना समय देना है, नहीं है अगर तो हम सेकंड या थर्ड आगे इस पे जा सकते हैं चिंतन करने के लिए। जैसे एग्जाम में भी बताते हैं ना कि आपके सामने पेपर है, तो आपको जो सबसे पहले इजी है वो लिखना शुरू करो, बजाय इसके कि आप हार्ड वाले के ऊपर लिखो या कॉन्सेंट्रेट करो कि इसका उत्तर क्या है उसका उत्तर क्या है, तो उसमें टाइम निकल जाएगा आपका। तो वो सोचने के बजाय जो पहले इजी है उसके ऊपर सोचो और उसके बाद में जो हार्ड वाला है उसके ऊपर सोचना शुरू करो। तो ये हो गया डेडलाइन हमें देनी है चिंतन के लिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो बताते हैं कि आत्मिक स्थिति, जैसे एक हो गया मौन, दूसरा हो गया आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति या बीज रूप अवस्था जो योग की अलग अलग स्टेजेस बताई हुई है। तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाते हैं हमारा जो चिंतन जो है अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे हमारा माइंड जो है अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। तो जैसे चिंतन में बताया कि कई व्यक्तियों के पूर्व अनुभव होते हैं या पिछले इसमें जो उनकी पढ़ाई की है जो भी किया है उन्होंने, तो वो अपने आप उनको टचिंग होनी शुरू हो जाती है, वो अनुभव अपने आप उनके सामने आने शुरू हो जाते हैं। क्लास में डॉक्टर सचिन अब कहते हैं ना कई बार कि ऊपर से चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, इस तरह से। तो हम जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे अपने आप जो पॉइंट जो अपने हमें टच होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बताया गया कि डायवर्जन, डायवर्जन माना जो भी चीज हम कर रहे हैं जैसे डिजिटल चीजें हैं बाकी की चीजों से हम कितना अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, कितना दूर अपने आप को लेके जा रहे हैं, कितने साइड में कर रहे हैं उन चीजों से, तो उतना हमारा चिंतन अच्छा होता है। जैसे अगर हम शोर शराबे के बीच में हैं, कहीं लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं ज्यादा आवाज आ रहा है, तो वहां पे हमारा चिंतन अच्छा नहीं हो सकता है। कई लोगों का ये होता है, जैसे मेरा प्रैक्टिकल ये है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे एक साइड में म्यूजिक बजनी चाहिए और एक साइड में मैं पढ़ाई करूंगा, चाहे वो टीवी में गाना बजे या टेप रिकॉर्ड में गाना बजे तो मेरे दिमाग में बात घुसेगी, नहीं तो घुसेगी नहीं ऐसे। तो कई लोग घर में आते थे तो बोलते थे पढ़ाई कर रहा है या गीत सुन रहा है करके। तो जैसे जैसे म्यूजिक बजती जाती थी अपने आप दिमाग चलना शुरू होता था उस तरह से ऐसे। तो कई लोगों का ऐसे अनुभव होता है कि हम जितना म्यूजिक बजाएंगे तो अपने आप जो है माइंड चलना शुरू हो जाता है। तो तो अलग अलग लोगों के अलग अलग, नहीं नहीं हर एक का मतलब ना हर एक का लेवल अलग अलग होता है। कई लोगों को उसके बीच में जाके अच्छा लगता है, कई लोगों को उसके बाहर जाकर अच्छा लगता है। जैसे मौन के लिए बताए तो मौन के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप अकेले हो, आप हजार लोगों के बीच में रहके भी शांत रह सकते हैं, मौन रह सकते हैं, और अकेले रहके भी आपका दिमाग 10 जगह पे भटक सकता है, आप मौन में या शांत में नहीं रह सकते हैं। तो जो डायवर्जन के लिए है कि कई लोग जैसे करते हैं कि यहाँ मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, तो उनकी हैबिट होती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना अच्छा होता है कि वो एक साथ में मल्टीटास्किंग करते हुए भी चिंतन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीजें हमारे साथ में ही हो, कहते ना नकल के लिए भी अकल होना चाहिए कि वो सामने वाला ऐसे कर रहा है हम भी उसी चीज को फॉलो करना शुरू करें, तो जरूरी नहीं कि हमारा चिंतन उस तरह से चलेगा। लेकिन एक बात हमारे मन को अगर आदत पड़ जाती है तो आप उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे लोग पहले ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग सीखते समय पूरी अलर्ट होते हैं, एक हाथ यहां होना चाहिए, स्टेयरिंग ऐसे होना चाहिए, ब्रेक ऐसे दबाना ऐसे। जब वो सीख जाते हैं तो मोबाइल पर भी बात कर रहे, एक हाथ से भी ड्राइव कर रहे, गाना भी सुन रहे, सब कुछ करते हैं। अगर कोई ड्राइविंग नया सीख रहा है और आप उसको उस समय कहो कि आप गीत पे ध्यान दो तो गीत सुनेगा वो? नहीं सुनेगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब एक बार आप परफेक्ट बन जाते हैं उस चीज में तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे एकाग्रता या चिंतन हम करते हैं तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बता। जैसे कई लोगों को आदत होती है मोबाइल चलते चलते वो यूज करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि एक्सीडेंट भी होने का चांस होता है वहां पे, लेकिन कई लोग उतने अलर्ट भी होते हैं वो करते समय भी। तो इसमें कि डायवर्जन, हम कितना अपने आप को इन चीजों से दूर रख पा रहे हैं, और एक बार अगर आपको आदत हो जाती है इसकी तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं इसका उपयोग। तो ये डायवर्जन जो बताए कि इन सब चीजों से हमें अपने आप को दूर करना है। और एक चिंतन के लिए सबसे अच्छी जो हैबिट बताते हैं कि लिखें, लिखना शुरू करें। कोई भी पॉइंट अगर आपके ख्याल दिमाग में आते हैं तो लिखना शुरू करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे चिंतन करना है, कुछ नहीं भी याद आ रहा है आपको या कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लिखना शुरू करें। अपने आप लिखने से जो है लिंक जो बननी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ लिखें। जैसे कई लोगों को आदत होती है कि रोज एक पेज दो पेज सोने के पहले पढ़ते हैं, तो कई लोगों को ये आदत भी होती है कि कुछ ना कुछ लिखते ही है वो, कुछ नहीं तो अपनी दिन भर का चार्ट ही लिखेंगे या डायरी लिखेंगे कि जो भी थॉट से हम विचार मन में आए हैं वो लिखना शुरू करते हैं। तो चिंतन के लिए सबसे अच्छा ये कि आप लिखना शुरू करें, बजाय इसके ये सोचे कि ये क्या टॉपिक है या इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। जो भी मन में आए लिखना शुरू करें आप। एक बार लिखने की हैबिट हो जाती है तो अपना माइंड जो है अपने आप उसमें कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे अच्छी आदत जो है लिखने की। इसमें जो चिंतन के लिए नेक्स्ट जो इसमें बताते हैं कि जोर जोर से आप पढ़ें, जितना आप जोर जोर से पढ़ेंगे उतना जो है वो बातें हमारी कान में हमको सुनाई देनी चाहिए। जैसे मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक होता है मन में पढ़ना और एक जोर से पढ़ना। जितना आप जोर से पढ़ेंगे बातें हमारे कान में सुनाई देती है, तो उसका जो इम्पैक्ट प्रभाव जो है हमारे दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग जो है उस तरह से फिर चलना शुरू होता है। जैसे कई लोगों को याद नहीं रहता है, तो उनको कहते हैं ना कि जोर जोर से पढ़ो, तो जोर जोर से पढ़ने से हमारा माइंड जो है अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी बात का अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, तो उसके पर जो प्रॉब्लम है या जो भी आप कर रहे हैं, उसे जितना आप जोर जोर से पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे, तो उसका जो हमें जो है चिंतन जो है हमारा उससे अच्छा होता है। तो इसके लिए ये नहीं कि आप 10 लोगों के बीच में बैठे और वहीं से आप जोर जोर से बोलना पढ़ना शुरू करो, लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया करके। से जब आप एकांत में हैं उस समय आपके आजू बाजू कोई नहीं, उस समय आप जो है जितना जोर से बात करेंगे, जैसे कहते हैं खुद से ही बात करना, तो एक होता है अंदर मन में ही अपने आप से बात करना, और एक जो होता है कि व्यक्ति खुद ही बात किए जा रहे हैं। हमारे पास ऑफिस में कई बार लोग फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, तो वो ईमेल चेक कर रहे हैं, अपने आप ही बकबक करते रहते हैं वहां पे कुछ, तो हम पूछते हैं क्या हो, बोलते नहीं नहीं आई एम स्पीकिंग विथ मी, तो अपने से ही बात करते हैं। तो उसके पास जो है आप जितना जोर जोर से बात करेंगे या पढ़ेंगे, उतना जो है हमारा चिंतन जो है अच्छा होते जाता है। और जैसे अलग अलग चीजें हमने इसके ऊपर देखी कि ये सब चीजें करेंगे तो हमारा चिंतन जो है उसे अच्छा होना शुरू होता है, जिसमें एक्सरसाइज की भी बातें देखी हमने। लोग जैसे ध्यान कहते हैं, एक संस्कृत में शब्द है मुंडी मुंडी भिन्न मरता, मुंडी मुंडी माना दिमाग को जो है मुंडी कहते हैं, तो हर एक की मुंडी सर अलग होता है और हर एक का चिंतन भी अलग अलग तरीके से चलता है। तो हम दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करें कि उसका चिंतन अच्छा चल रहा है और हमारा चिंतन ऐसे नहीं चल रहा है। हाँ मुंडे 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 मतिर भिन्ना, हाँ तो ये कि हर एक का चिंतन अलग होता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उस चीज के लिए, तो आपका जो चिंतन अच्छा होना शुरू हो जाता है। और चिंतन पहली बात है कि चिंतन चलना चाहिए, अगर चिंतन नहीं चल रहा है तो आप ये सोचकर बैठ जाए कि मेरा तो चिंतन चलता ही नहीं इसलिए हम कुछ कर रहे ही नहीं, तो ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, जैसे पता ना कि चिंतन करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, चिंता करेंगे तो बुद्धि खराब होती है उससे, लेकिन चिंतन करेंगे तो उसी बुद्धि का विकास होता है। तो अगर दूसरी भी क्षमताएं हमें हमारी लाइफ में लानी है, जैसे किसी में कॉन्सेंट्रेशन तो होता ही है, लेकिन किसी चीज को ठीक तरीके से जानना पहचानना, अगर वो क्वालिटी किसी की लाइफ में लानी है, या किसी चीज को अलग अलग एंगल से जो लोग देखते हैं अपने विचार देते हैं, तो हमारी जो अंदर की क्वालिटीज जो है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, वो इस चिंतन से की से बाहर निकलती है। तो जितना हम चिंतन करते जाएंगे हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी लाइफ में हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने चिंतन से रिलेटेड, कि एकाग्र चिंतन के करते समय हम एकाग्र कैसे रह सकते हैं और कैसे हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।